मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, मुझे याद आ रहा है कि पिछले सप्ताह मैंने प्रेम के मूल्यांकन विषय पर कुछ बातें आप लोगों के साथ की थी और कुछ प्रश्न उठाए थे और मुझे बहुत सारे जवाब ईमेल के जरिए मिले हैं। और खासकर उन ईमेल्स में ये रिक्वेस्ट की गई है, विशेष तौर पर दबाव डालकर, कि सर इस विषय पर थोड़ी और बात की जाए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरे जो प्रिय श्रोता हैं उनमें ज्यादा बड़ी संख्या नौजवानों की है और जब भी प्रेम की बातें होती हैं तो स्वाभाविक है कि उनकी रुचि इस विषय के प्रति होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि आप उस दौर से गुजर रहे होते हैं जबकि यह प्रेम की भावना आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रस्तुत करती है। जी हाँ, चैलेंज। चैलेंज किस मायने में? कि एक तरफ आपके हृदय में प्रेम की लहरें हिलोरी मार रही हैं, दूसरी तरफ यही वह वक्त है जब आपको अपने कैरियर के बारे में संघर्ष करना है, अपने को एस्टैब्लिश करना है, और तीसरा है समाज के अपने कुछ मापदंड हैं और उन मापदंड की सीमाओं के अंतर्गत ही आपको अपने प्रेम को अंजाम देना है। इनमें संतुलन बना पाना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए शायद आप सबने ये चाहा है कि मैं इस विषय पर और बातें करूं, तो डेफिनेटली मुझे लगा कि नहीं, यह विषय ऐसा है भी जिस पर बातें की जानी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा संकट प्रेम के साथ क्या हुआ है? यह बहुत ही एक सीधा साधा रास्ता है, लेकिन हमने इसे जटिल बना दिया है। कबीर दास जैसे दार्शनिक ने तो यहां तक कहा कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, यानी कि जो प्रेम करता है, जो प्रेम को जानता है, वह महाज्ञानी है। लेकिन जब वो प्रेम की बात कह रहे हैं तो वह इस तरह का भौतिक प्रेम नहीं है जिसकी बात हम सब कर रहे हैं, और हम जो अभी बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली भौतिक जगत के प्रेम की बात कर रहे हैं। और सच पूछिए तो हमारा अभी जोर केवल एक रागात्मक प्रेम पर है, यानी कि रोमांटिक प्रेम जिसे आप कह सकते हैं। अदरवाइज तो फिर प्रेम के बहुत से डायमेंशंस हैं, राष्ट्र प्रेम से लेकर के बहुत सारे प्रेम अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हमारा जो अभी दबाव है या कह लीजिए कि जो लिमिटेशन है वो सिर्फ रागात्मक प्रेम तक है। और समाज ने जो इसे जटिल बनाया है वह भी रागात्मक प्रेम को ही जटिल बनाया है, क्योंकि उसका सीधा संबंध समाज से है और वो जटिल बनते बनते कुछ इतना जटिल हो गया है कि जब आप दो तीन तरह की बातों को एक दूसरे के आमने सामने रखेंगे तो सही मायने में निष्कर्ष निकालना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से सही कौन है, और जब तीनों को एक साथ कसने की कोशिश करेंगे तो वो तीनों अलग अलग दिशाओं में भागेंगे क्योंकि वो मैच करते ही नहीं है। इसीलिए जो भी इस प्रेम में पड़ते हैं वो पशुपेश में पड़ जाते हैं और अंततः जाकर के ये कहा गया कि प्रेम अंधा होता है। अब आप इसको कबीरदास से मिला करके देख लीजिए। कबीरदास कह रहे हैं कि वो ज्ञानी हो जाता है। ज्ञानी हो जाता है कि मतलब आप कह लीजिए कि उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, ज्ञान का प्रकाश उसके अंदर फैल जाता है जो प्रेम को समझ लेता है, पढ़े सुपंडित होए। और सामाजिक व्यवस्था के तहत हम क्या देखते हैं कि प्रेम अंधा होता है। जब हम कहते हैं प्रेम अंधा होता है उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि प्रेम से भरा हुआ मस्तिष्क तर्क को समर्पित कर देता है, उसके दिमाग से तर्क खत्म हो जाते हैं। यानी कि प्रेम में पड़ा हुआ मस्तिष्क, प्रेम में डूबा हुआ मस्तिष्क जब कोई भी निर्णय लेता है तो वह निर्णय तार्किक नहीं होता, वह भावात्मक होता है, उसमें भावना की प्रधानता होती है। और सीधी सी बात है कि कोई भी निर्णय, चाहे वह भौतिक जगत से संबंधित हो या आध्यात्मिक जगत से संबंधित हो, यदि केवल भावनात्मक आधार पर निर्णय लिया गया है तो वह गलत ही होगा। दोस्तों, शायद रामकृष्ण परमहंस का यह वाक्य आपने सुना होगा, हालांकि यह बात आपको पढ़ने को बहुत कम मिलेगी, कि रामकृष्ण परमहंस तक ने यह कहा कि जो भक्ति होती है, भक्ति के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास ज्ञान होना चाहिए, बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। यानी कि जो आप भक्ति कर रहे हैं ना, ये नहीं कि बिना सोचे समझे बस लग गए, नहीं, आपने बहुत ही सोच विचार करके भक्ति के रास्ते को चुना है तभी आप सच्चे भक्त हो सकते हैं। तो वहां देखिए, जब वो भक्ति की बात कर रहे हैं तब भी ज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी कि सोच समझकर आपने निर्णय लिया है। लेकिन जब हम प्रेम करते हैं तो क्या सच में ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। न तो तब होता है जब हम प्रेम कर रहे होते हैं, और न तब होता है जब हम प्रेम के बारे में सोच रहे होते हैं, जिसे मैंने प्रेम का मूल्यांकन कहा। मैंने प्रेम किया, फिर मेरा प्रेम कैसा रहा, सही था या गलत था, सही गलत था तो क्यों था, किस लेवल तक वह सही रहा, कहां उसमें भूल चूक हुई, और फिर उसका जो अंततः परिणाम हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ, ये सब मूल्यांकन के अलग अलग मापदंड हैं, मूल्यांकन के अलग अलग आयाम हैं, डायमेंशंस हैं। अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो हमको कुछ कसौटियां तो चाहिए। जब हम इन कसौटियों पर कसने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कसौटियां ही नहीं हैं, और जो कसौटियां हैं यदि हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो हम बुरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे कसौटियां आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, मेरी आज की बात आपको थोड़ी सी जटिल जरूर लगी होगी, लेकिन हम लोग इस पर बातें करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप सब जिस तरह की समस्याओं को भी लेकर जूझ रहे हों मुझे लिखकर भेजें, ताकि उनको आधार बनाकर के भी मैं कुछ बातें आपके सामने रख सकूं। तो अब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।